सर्वोच्च जगत में
शील धर्म, सर्वोच्च जगत में
शील धर्म, सर्वोच्च जगत में
शील धर्म, सर्वोच्च जगत में
ज्ञान चरित्र शील से उपजे,
ज्ञान चरित्र शील से उपजे, शील धर्म सर्वोच्च जगत में शील धर्म।
ब्रह्मचारी के आगे रोग शोक कोई निकट ना आवे,
रोग शोक कोई निकट ना आवे, रोग शोक कोई निकट ना आवे।
आत्म काबल मन वांछित फल ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य से पावे, धर्म सर्वोच्च जगत में
शील धर्म सर्वोच्च जगत में ज्ञान चरित्र शील से उपजे शील धर्म।
उत्तम ब्रह्मचर्य के कारण मुनियों ने निज मन को जीता,
मुनियों ने निज मन को जीता, मुनियों ने निज मन को जीता।
इंसा से भगवान बन गए वे ब्रह्मचारी वीर जिनंदा, कर्म नहीं हो निकट में,
पाप कर्म नहीं हो निकट में
शील धर्म सर्वोच्च जगत में,
शील धर्म सर्वोच्च जगत में
ज्ञान चरित्र शील से उपजे,
ज्ञान चरित्र शील से उपजे शील धर्म
चरित्र शील धर्म ब्रह्मचर्य। मुनिराज कहते हैं दश लक्षण पर्व में दसवां धर्म उत्तम ब्रह्मचर्य। उत्तम ब्रह्मचर्य दस धर्मों की कथाओं में उत्तम ब्रह्मचर्य का महत्व। शील धर्म सर्वोच्च जगत में ज्ञान चारित्र शील से उपजे। अगर ब्रह्मचर्य नहीं है, अगर ब्रह्मचारी नहीं है तो कैसा ज्ञान, अगर शीलवान नहीं है तो कैसा ध्यान। एक था एक गांव में ग्वाला, नाम था मतिवरण। ग्वाला मतिवरण गैयाओं को चराने, बछड़ों को चराने, बछियाओं को चराने गांव से जाता, सुबह खोलता, शाम को गोधूली के समय गैया बछड़ों को लेकर गांव में वापस आ जाता, सबके खूंटों पर बांध देता। यही था कर्म आजीविका का, यही था धर्म जीवन यापन का, मतिव्रण का, ग्वाले का। एक दिन की बात, अपनी गैया बछड़ों को लेकर ग्वाला गांव से बाहर अपने जमींदार के गैया बछड़ों को चराने के लिए चराहगाह में लाया। धीरे धीरे गोधूली का समय आने को था, उसी समय अपनी गैया बछड़ों को, जिनको अनेकों नाम से पुकारा करता था, जब उसने अपनी गाय बछड़े बछियाओं का गणना की, उन्हें गिना, तो उसमें एक बछड़े को कम पाया। देखने लगा, मेरा इस गोधन में से एक बच्चा कम है, और वो भी कम किसका, स्वयं जिसके यहाँ वो नौकरी करता था। सारी गैया बछड़ाओं को तो गांव में आकर बांध गया, उस बछड़े को खोजने के लिए उसी समय फिर जंगल में वापस आया। आवाज दे रहा था, अरे ओ भीमा, मेरे बछड़े, अगर मैं तुझे गांव में ना पहुंचाया तो मेरा जमींदार मुझे गांव से बाहर निकाल देगा। पर ना मिला मिलने वाला, उसे खोजता खोजता, देखता देखता, उसी रात वो आ गया जंगल के विपट वन में। हाथ को हाथ दिखाई न देता था, रात्रि का मध्य प्रहर होने लगा था, आकाश में बादल छाए हुए थे, सर्दी की रात थी, धीमी धीमी बरसात थी। उस हल्की हल्की बरसात में ओस की बूंदें भी पड़ रही थी, कभी बादल और बादलों की ओर से चमकता हुआ चांद। उस चमकती हुई चांदनी में सामने से देखा, शायद मेरा बछड़ा बैठा है। जब निकट गया, देखता क्या है, एक दिगंबर मुनिराज बैठे हैं। अरे ये वो मुनिराज हैं जो हमारे ग्राम में आए थे, जिन्हें खड़ा खड़ा देखता हुआ मैं आहार चर्या देख रहा था। ये आहार ले रहे थे मेरे जमींदार के यहाँ, और मैं देख रहा था, गरीब हूं ना मैं, इनके निकट तक भी न जा सका। न जाने इनका नाम क्या है, पर हाँ सुना है मुनियों की, इन साधुओं की जो सेवा करता है उसका कल्याण हो जाता है। मैं क्या सेवा करूं रात्रि में, जवाब नहीं है जैन मुनियों का। जहां भी जाते हैं पैदल जाते हैं, जहां भी चलते हैं पैदल, न इन्हें सर्दी की चिंता, न इन्हें गर्मी की चिंता, बैठे हैं शांत सौम्य मुद्रा में। सारी रात उनके निकट बैठ गया, इस प्रतीक्षा में कि सुबह को प्रातःकाल जब ये नेत्र खोलेंगे, मुझे देखेंगे और आशीर्वाद का वरद हस्त उठेगा, और मेरे शीश पर ये अपनी पीछी रखेंगे। उनके शरीर पर ओस की बूंदे पड़ रही थी, सोचने लगा मतिवर्ण ग्वाला, इनके शरीर की ओस की बूंदे पूछता रहूं, इनकी सेवा करता रहूं। करता रहा वो सारी रात। हुआ भोर की प्रभाती, उसमें जब पहला शब्द मुनिवर का मुख से निकला, उन्होंने पूछा, तू कौन है रे? मैं हूँ मतिवरण ग्वाला। उत्तर था यही, चरणों में गिरकर बताया, मैं सारी रात आपके चरणों में बैठा रहा, मेरा बछड़ा खो गया था, आपके दर्शन हो गए, मैं कृतकृत हो गया। मुनिवर ने प्रसन्न होकर इस ग्वाले को नमोकार मंत्र, महामंत्र, कल्याणकारी मंत्र, नमोकार महामंत्र सिखाया। ग्वाला अनपढ़ गंवार उस मंत्र का अर्थ क्या जाने, पर सीखने लगा। सिखा रहे थे मुनिवर, बता रहे थे मुनिवर, और वो सीखता जा रहा था। मुनिवर कह रहे थे,
नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम,
वाले कोई भी कार्य करेगा इस मंत्र को एक बार, तीन बार, पांच बार, सात बार या नौ बार बोलकर करना, तेरा कार्य सिद्ध होगा, तेरे मन को शांति मिलेगी। मुनिवर से आशीर्वाद ले मतिवर्ण ग्वाला उस जंगल के बाहर आया। नदी के किनारे देखता क्या है, नदी में बाढ़ आई हुई है, नदी में बाढ़ आई हुई है। नदी की बाढ़ से परली तरफ उसका बछड़ा, भीमा बछड़ा खड़ा है। कहने लगा, अरे भीमा, मैं तुझे इधर मत आ जाना, मैं उधर ही आता हूँ। कहते हैं, जिस समय मनुष्य का आयु कर्म पूरा होता है, न एक सांस कोई बढ़ा सकता है न घटा सकता है। मतिवर्ण कुछ भी सोचे बिना मुनिवर का दिया हुआ महामंत्र, नमोकार मंत्र, तीन बार बोलकर उस नदी में कूद गया अपने बछड़े को पकड़ने के लिए। मगर कहते हैं कि जिस समय आयु कर्म पूरा हो गया, सांस पूरी हो गई, कोई रोक नहीं सकता, मृत्यु आनी थी। एक नकुली लकड़ी पड़ी थी नदी के अंदर, वो सीधी उसके पेट में घुस गई और मतिवर्ण की यही लीला समाप्त हो गई। मतिवर्ण ग्वाला मर गया। मगर कहते हैं, शुभ कर्मों का फल शुभ, अशुभ कर्मों का फल अशुभ। नमोकार मंत्र उसकी भावना को लिए हुए वो मतिवर्ण ग्वाला अगले भाव में, अगले जन्म में जहाँ पैदा हुआ, वो उसी जमींदार के यहाँ, उसी सेठ के यहाँ, जो सेठ उसका मालिक था, उसी की सेठानी के गर्भ में पैदा हुआ। और जब वो बालक बनकर आया, जिसने भी देखा वो ये कह रहा था, कितना सुंदर बालक है, कितना प्यारा बालक है। जो भी कह देखता वही कहता, इसके कितने सुंदर दर्शन हैं, कितने शुभ दर्शन हैं। इसलिए इसका नाम सबने मिलकर रख दिया सुदर्शन। सेठ का बेटा, सेठ सुदर्शन, सुदर्शन सेठ सुदर्शन। न जाने कितनी ग्रीष्म ऋतु आई और चली गई, न जाने कितनी शरद ऋतु आई और चली गई, न जाने कितने हेमंत और बसंत आए, चले गए। ये बालक बड़ा हो गया, सेठ का बेटा सेठ, जौहरी सुदर्शन, सुंदरता में असीम सुंदर। उधर इस देश का राजा, पाटलिपुत्र नगरी का राजा, इस सुदर्शन का मित्र था, प्यारा मित्र, प्यारा प्यारा मित्र। इस मित्र के यहाँ दीपावली का उत्सव मनाया जा रहा था। राग हो रहे थे, रंग हो रहे थे, दीपावली मनाई जा रही थी, दीप से दीप जलाए जा रहे थे। उसने सुदर्शन को राजा ने अपने मित्र को दीपावली उत्सव पर बुला रखा था। गीत हो रहे थे, गीत और उत्सव में सम्मिलित हो रहे थे, सम्मिलित हो रहे थे, सम्मिलित हो रहे थे। उल्लास ही उल्लास, दीपमालाओं का उल्लास। इसी उल्लास में पाटलिपुत्र का राजा और पाटलिपुत्र का नगर सेठ, वो सुदर्शन सेठ सुदर्शन, आज दोनों मित्र गले मिल रहे हैं, उत्साह मना रहे हैं। इसी मध्य परिचारिका आके सूचना देती है, महारानी गजवाहिनी पधार रही है, पाटलिपुत्र की महारानी गजवाहिनी पधार रही है। राजा ने महारानी का स्वागत किया, अपने मित्र सुदर्शन से परिचय कराया। रानी ने नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नख शिख सुदर्शन को देखा और देखती ही रह गई आवाक। मन ही मन सोचे, अरे ये वही सुदर्शन है जो एक दिन काले अश्व पर काले घोड़े पर बैठा हुआ मेरे महल के नीचे को जा रहा था। मैं देखती रह गई थी येन केन प्राकेण। वो रात्रि धीरे धीरे बीती, सब मेहमान विदा हुए महलों से। राजा एक एक कर सबको विदा कर रहे थे। सुदर्शन जी भी अपने घर की ओर अपनी पत्नी के साथ अपने बालक के साथ विदा होने लगे। महारानी कहने लगी, गजवाहनी रानी पाटिवली पुत्र की कहने लगी, सुदर्शन जी फिर आना। सुदर्शन उसकी आंखों की चमक को समझ नहीं पा रहे थे। उसके नेत्रों में सुदर्शन के प्रति क्या भावना थी। सुदर्शन तो चले गए, मगर रानी के मन में, गजवाहनी के मन में, सुदर्शन के मित्र की पत्नी के मन में उद्वेलना थी। कितना सुंदर है, कितना प्यारा है ये नवयुवक सुदर्शन। और मेरी याद आया, जब ये काले घोड़े पर बैठा हुआ महल के नीचे को जा रहा था तो मैंने दासी से कहा था तू इस नवयुवक को महल में बुला ला। उसने आकर जवाब दिया कि वो तो पुरुष ही नहीं है। आज मैंने देखा कि इसका तो बेटा भी है, इसकी तो पत्नी भी है। इसका अर्थ है मेरी दासी ने मुझे झूठ बोला है। महारानी गजवाहनी तिल तिला उठी, तिल किला उठी, दासी को बुलाया, कहने लगी तूने मुझे झूठ बोला है, मैं तुझे दफान कर दूंगी। दासी घबरा गई, दासी को लालच दिए, कहा किसी भी प्रकार तू सुदर्शन सेठ सुदर्शन को मेरे महलों में बुला ला। दासी कहने लगी, महारानी पर पुरुष के विषय में एक सत्वंती नार को सोचना भी पाप है। रानी कहने लगी, तेरा मुंह माया और धन से भर दूंगी, तू किसी भी तरह बुला ला। दासी पहले तो ना मानी, पर जब उसे लालच पर लालच दिए गए तो आखिर दासी मान गई। रानी ने बताया कि अगर सुदर्शन ना आया तो तू शमशान घाट में जाना, वो नमोकार मंत्र में उसे पढ़ता पढ़ता लीन होकर शमशान घाट में प्रतिमा योग लगा लेता है, उसे अपने तन मन की शुद्ध नहीं रहती। अगर वो तुझे मिल जाए तो तू, अगर वो खुद ना आए, उसे अपने सैनिकों के साथ उठवाकर मेरे शयन कक्ष में पहुंचा देना। दासी चली गई शमशान घाट में प्रतिमा योग लगाए हुए
सेठ सुदर्शन।
वो सुंदर नवयुवक सेठ सुदर्शन प्रतिमा योग लगाए हुए बैठे हुए थे और एक ही बात कह रहे थे, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोय सभ्य साहुणम। दासी ने हिलाकर देखा, डुलाकर देखा, ना हिले डुले तो उन्हें उठवाकर रानी के शयन कक्ष में पहुंचा दिया। रानी ने यत्न किया, प्रयत्न किया, जिस समय तंद्रा टूटी सुदर्शन ने कहा, मैं कहा कि तुम मेरे महल में हो। महारानी मैं तुम्हें अपनी माता का दर्जा देता हूँ। रानी कुटिल हंसी हंसने लगी, दोनों का वार्तालाप हुआ। सारी रात रानी चेष्टाएं करने लगी, मगर वो ब्रह्मचर्य का दीवाना, वो शील व्रत का धारक, उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी के अतिरिक्त हर नारी को माँ बहन और बेटी के अतिरिक्त कुछ ना मानता। वो ना मानी, अंत में जब हार गई तो उसने कहा कि तूने त्रिया चरित्र नहीं देखा है, और त्रिया चरित्र के वशीभूत उसने शोर मचाकर अपने कपड़ों को फाड़ लिया और शोर मचाया कि सुदर्शन मेरी इज्जत लूटने आया है। महाराज वहां आ गए, सुदर्शन को बंदी बना लिया गया, सुदर्शन को बंदी बना लिया गया। महारानी का त्रिया चरित्र इस समय काम कर गया। सुदर्शन के लिए आदेश फरमा दिया गया कि सूर्य की पहली किरण के साथ सुदर्शन को सूली पर चढ़ा दिया जाए। सुदर्शन ये कर्मन की गति है, सुदर्शन को सूली पर ले जाया जा रहा है। कर्मों की गति न्यारी, पल में राजा पल में भिखारी। सब रो रहे थे, पत्नी रो रही थी, सुदर्शन सूली पर चढ़ाने के लिए तैयार थे। महारानी आई, राजा आए, चांडाल ने फांसी का फंदा गले में डाल दिया। सुदर्शन से कहा गया, अंतिम कोई तेरी इच्छा हो तो बोल। सुदर्शन ने कहा, मैं अपनी पत्नी को एक कथा सुनाना चाहता हूँ, एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, आज्ञा मिली बोल सकते हो। सुदर्शन कहने लगा अपनी पत्नी से, सुनो ज्योति, एक ग्वाला था, वो ग्वाला उसका बछड़ा खो गया, वो दिगंबर मुनिराज की शरण में रात को चला गया। उन्होंने जिस प्रकार उस ग्वाले को नमोकार मंत्र सुनाया था, तीन बार वही मंत्र मैं तुम्हें बोलता हूँ। वो मंत्र नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो झायाणम, नमो लोय सभ्य साहुणम। सुदर्शन सूली पे चढ़े हुए बोल रहे हैं, उनकी पत्नी उनका पुत्र सुन रहे हैं। चारों ओर शांत वातावरण है, उधर सांस रुकी जा रही है, झटका लगने वाला है, सूली खींचने वाली है, सुदर्शन समाप्त होने वाला है। ब्रह्मचर्य व्रत के ऊपर एक जीव प्राणों से मुक्त होने वाला है। उसी समय नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ध्याणम, नमो लोय सभ्य साहुणम, ये शब्द गूंजा और सूली का फंदा खींचा। मगर देखते क्या है, वहीं सूली के फंदे फूल बन गए और आकाश मार्ग से सिंहासन आ रहा है। जंजीरें टूट कर गिर गई। बोलो ब्रह्मचर्य व्रत की जय, दश लक्षण महापर्व की जय। बोलो दश लक्षण व्रत की जय। सूली से बन गए फूल, ये है ब्रह्मचर्य का कमाल, शील धर्म का कमाल, शील धर्म का कमाल। बोले ब्रह्मचर्य महाव्रत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोय सर्वसाहुणम।